نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نماز نبوی. ہم اس میں دعائے تحریمہ سے لے کر یا استفتاح سے لے کر سلام تک پڑھ چکے. اب ہم اس کے بعد کی چیزوں میں سے جو سائڈ کی چیزیں ہیں، وہ نماز جو کہ کہہ لیجئے کہ ہر وقت ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن نماز سے ایکسٹرا ہے، اس میں ایک چیز ہے نماز وتر. پچھلے سیشن میں ہم نے نماز وتر دیکھی تھی اور آج ہم انشاءاللہ تعالی دعائے قنوت کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کام کیجئے، جب آپ وہ کام پوری روح کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کام کی جو فضیلتیں ہیں، جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں، وہ سمجھ آنے لگ جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو مجھے اس چیز کے لیے تیار کر دیتی ہے کہ ہم اپنی نماز کو بہتر کریں. تو دعائے قنوت کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں، قنوت قنطہ سے، وقنوتی کا لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے. وسجدی ورقائی حضرت مریم علیہ السلام کے ٹیکسٹ میں ہے. تو قنوت کہتے ہیں دو چیزوں کو، پہلے سمجھ لیجئے، پھر آپ اس کی روح پہ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ کیا ہے کہ دوام اور عاجزی، یہ دو لفظ لکھیے گا. کسی کام کو ہمیشہ کرنا اور اس کو کرنے کے بعد عاجز بھی رہنا، بہت ہی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے گا کہ جتنا زیادہ آپ کے اندر یہ دو چیزیں بڑھتی جائیں گی نا، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام اور زیادہ لیتا رہے گا، اور زیادہ رہے گا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کر تو لیتے ہیں لیکن مستقل نہیں ہوتا. رمضان میں تو خوب ماشاءاللہ عبادات، نمازیں اور سب کچھ، لے کے بعد پھر کافی چیزیں پیچھے ہونے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے ایسا آپ کے ساتھ بھی؟ تو گویا کہ قنوت نہیں رہا. جس چیز میں دوام نہ ہو وہ قنوت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. دوسری چیز عاجزی. ہم بہت سارے کام کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ حلوہ پکا کر اوپر راکھ ڈال دینا، کبھی کبھی ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ نقصان ہوگا اس کا کہ آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. بالکل اسی طرح سے ہم عبادات کے نام پہ کچھ کر رہے ہیں، معاملات کے نام پہ کر رہے ہیں، کوئی بھی خیر کا کام کسی بندے سے کر رہے ہیں، یاد رکھیے مستقل کیجئے اور پھر اس کو کرنے کے بعد عاجز بھی ہوں. آپ کسی فقیر کو یا ماسی کو کچھ دے دیں اور اس کے بعد احسان جتلائیں نا، اور بری باتیں کہ اور اپنے آپ کو بڑا کریں، تو اس کو بھی نہیں خوشی ہوگی. نیکی برباد، گناہ لازم ہوگا. اور دوسری بات ہے، کبھی کریں اور کبھی نہ کریں، تو اس پہ تو وہی بات ہے جو چند دن پہلے ایک جملہ پڑھا، ایک نہ کر کے دیکھیے، لوگ آپ کی پچھلی ساری نیکیوں کو بھول جائیں گے. کسی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہمیشہ کرتے تھے، آپ کس کی ضرورت پوری کرتے تھے، صرف ایک ایسا وقت آ جائے کہ آپ نہ کر سکیں یا آپ نہ کریں، تو لوگ اتنے شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، پچھلا سب بھول جاتے ہیں. دعائے قنوت کا پیغام یہ ہے کہ آپ ہر رات وتروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ میرے مالک، میں ہمیشہ آپ کی بندی ہوں. ایاک نعبد ویاک نستعین کا جو دعویٰ میں کرتی ہوں نا، یہ ایک دو دن کا نہیں ہے، یہ میرے مشکل حالات کا نہیں ہے، یہ گزر گئے تو سب ختم. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس میں آج کل کسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں تو یہ کام کر رہی ہوں اور جب نکل جاؤں گی تو چھوڑ دوں گی. یہ اس لیے ہے کہ میں ہمیشہ تیری بندی رہوں گی. اور دوسری چیز کیا ہے کہ عاجز بھی رہوں گی. دیکھیں نا، تین معنی تھے عبادت کے، پرستش، اطاعت اور بندگی. غلامی، بندگی اور اطاعت. اطاعت بھی تیری، عبادت بھی آپ کی، اور سب کچھ کر کے اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے دوں گی. جی، یہ ہے اصل بات. تو جب جتنا آپ کو اس بات کا یقین آ جائے گا، اتنا اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لے گا. اور خاص طور پہ جو ہم دعاؤں میں دعا پڑھتے ہیں، अभी जो हम सीखने वाले हैं, अगर वाकई उस पर गौर व फिक्र करके पढ़ेंगे ना, तो ये दुआए कनूत हमारी जिंदगी के किबले बदलने के लिए काफी है। ये वो दुआ है कि जिसको अगर आप एक दफा तर्जमे से पढ़ लें तो गैर इस्लाम से सारी मोहब्बतें मशरूत हो जाती हैं, और अल्लाह ताला के साथ जोड़ने और जुड़ने वाला हर इंसान आपकी जिंदगी में सबसे अहम इंसान बन जाता है। और एक छोटी सी बात करके फिर इंशाल्लाह हम बुक में से शुरू करेंगे, और वो क्या है, रात को सोने से पहले या सोने के बाद वितर पढ़े जाते हैं, और वितरों में दुआए कनूत होती है, और दुआए कनूत में कुछ ऐसे राज हैं जो अल्लाह और बंदे के बीच में है। जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक महसूस करेंगे ना, उतना आप दुआए कनूत को इंजॉय करेंगे, और दुआए कनूत को इंजॉय वही करता है जो इसके तर्जुमे को जानता है, जो इस पे गौर व फिक्र करता है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में, हम अपने कल्चर पे ही बात कर रहे हैं, बहुत सारी इबादत करते हैं और कभी नहीं सोचते और कम ही पूछते हैं कि ये कर क्यों रहे हैं, इसमें से हमें मिल क्या रहा है। यानी बस पढ़ना बराए पढ़ना और सुनना बराए सुनना और इसी तरह की दूसरी चीज़ें। और फिर जब हम उसकी रूह जान लेते हैं ना, तो उसके बाद तो फिर हम पे ये लाजिम हो जाता है कि हम उसका हक अदा करें। आइए इस सोच के साथ किताब से शुरू करते हैं और इस मौजू को पढ़ते हैं कि इसमें हमारे लिए आखिर क्या नसीहत की गिज़ा है और हम इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। एक दफ़ा अपने लिए दुआ मांगे, अल्लाह शैतान को मेरे से दूर कर दे। मैं बहुत ही प्यारी दुआ सीखने वाली हूँ, तेरे साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहती हूँ, अपना तेरे साथ कुर्ब बढ़ाना चाहती हूँ। ऐ मालिक, तू मुझे इसकी तौफीक दे। और आप जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ इस अपने मामले को सही करती जाएंगी ना, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उतना ही आपका दिल भी इसके साथ जोड़ देंगे। तो दुआए कनूत की असल हकीकत क्या है, कैसे हम इस सारी चीज़ों को कहते हैं, ये भी बात हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ही पता चलेगी। आप देखिए कि दुआ तो दुआ ही होती है ना, लेकिन हर दुआ के अंदर कोई ना कोई ख़ास बात भी होती है। अमूमी तौर पे तो दुआ बड़ी आम चीज़ है, लेकिन जब आप उस दुआ को आप किसी ख़ास मौके से जोड़ जाते हैं, तो उसकी फिर अहमियत दो चंद हो जाती है। जैसे पीछे हमने सुन्नतें पढ़ी या नमाज के बाद के अज़कार पढ़े, कोई ये सवाल कर सकता है कि क्या अज़कार हम, ये जो नमाज के बाद की दुआएं, ये आमतौर पर नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर उधर क्यों पढ़ें, इसके पीछे कोई हिकमत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन कब मांग रहे हैं, जब वाकई वो आपकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे, या जब वो देना भी चाह रहा है, या फिर आप उस वक्त मांग रहे हैं कि इस वक्त वो आपको देना नहीं चाह रहा, या कोई और बातें हैं। तो अपना मुहासबा करते हुए पढ़ेंगे कि कहीं मैं अल्लाह ताला के साथ जो बातें करती हूँ इससे ऑपोजिट तो नहीं जी रही, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं मेरी ज़िंदगी में कि जो मुझे अल्लाह से दुआएं मांगने के बावजूद भी उन दुआओं की कबूलियत से दूर कर देती हैं। तो कई दफ़ा देखिए, हमारा अपना ही कोई अमल होता है जो हमें खुद नहीं दिखता, दूसरों को दिखता है। जैसे हमारा फेस दूसरों को दिख रहा है ना, आईने में अपने आप को रखेंगे तो दिखेगा, नहीं रखेंगे तो दूसरे ही आपका आईना बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक दे। जो रिवायत है वो है उबई बिन काब से, दुआए वितर या दुआए कनूत क्या है, उबई बिन काब से फरमाते हैं कि अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युतिरु बिसलासी रकातिन व यक़नुतु क़ब्ला रुकू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन वितर पढ़ते और दुआए कनूत रुकू से पहले पढ़ते थे। ये रिवायत है जी आपके पास निसाई की 1700 और इब्ने माजा 1182, और सही रिवायत है। वितर में रुकू के बाद कनूत की तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं, और जो रिवायात सही हैं उनमें ये वजाहत नहीं है कि आपका रुकू के बाद वाला कनूत कनूते वितर था या कनूते नाजिला। लिहाजा सही तरीका ये है कि वितर में कनूत रुकू से पहले किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर दो सुतूनों के दरमियान लटकी हुई रस्सी देखी तो पूछा, ये क्या है? अनयूजुअल चीज़ दिखी। लोगों ने कहा कि ये सईदा ज़ैनब रदी अल्लाहु अन्हा की रस्सी है। वो रात को नफिल नमाज पढ़ती रहती हैं, फिर जब सुस्त हो जाती हैं या थक जाती हैं तो थाम लेती हैं। आपने फरमाया इसे खोल दो। हर शख्स अपनी नशात और चुस्ती के मुताबिक नमाज पढ़े, फिर जब सुस्त हो जाए या थक जाए तो आराम करे। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई भी हमें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना ही अमल इख्तियार करो जिस कदर तुम्हें ताकत हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकेगा, लेकिन तुम अमल करने से थक जाओगे। ठीक है। हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए और इसलिए सिखाए कि मैं उनको कनूत में पढ़ सकूं। ठीक है, कनूत वितर में कहूं। और ये कैसे होगा, ये कैसे है, क्या है, आइए जरा अल्फाज को देखते हैं। अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत वकिनी शर्र मा कदैत फइन्नक तक्दी वला युक्दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारक तरब्बना व तआलैत। एक एक लफ्ज़ खूबसूरत लफ्ज़ है और इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तर्जमे पे गौर कीजिएगा। ए अल्लाह, मुझे हिदायत दे, मुझे हिदायत देकर इन लोगों की जमात में शामिल फरमा जिनको तूने रुश्द व हिदायत से नवाजा है। यानी मुझे हिदायत देकर रुश्द वाले, हिदायत वाले लोगों में शामिल कर दे, और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे, मुझे आफियत दे और इन लोगों में शामिल कर दे जिन्हें तूने आफियत बख्शी और जिन लोगों को तूने दोस्त बनाया, इनमें मुझे भी शामिल कर ले। आप भी दुआ कीजिए, ये अपना दोस्त बना ले। जो कुछ तूने मुझे अता फरमाए इसमें मेरे लिए बरकत डाल दे, और जिस शर और बुराई का तूने फैसला फरमाया इससे मुझे महफूज रख। यकीनन तू ही फैसला सादर फरमाता है और तेरे खिलाफ फैसला सादर नहीं किया जाता। यानी तू तो हुक्म देने का हक रखता है पर कोई तुझे हुक्म नहीं दे सकता, ये मुराद है। और जिसका तू वाली बना से मुराद क्या है, दोस्त। वो कभी जलीलो ख्वार और रुस्वा नहीं हो सकता, और वो शख्स इज्जत नहीं पा सकता जिसे तू दुश्मन कहे। हमारे परवरदिगार, तू बड़ा ही बरकत वाला और बुलंदो बाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले तो इसका रेफरेंस लीजिए, अबू दाऊद की रिवायत है 1425 और 1426। क्या पता चला, दुआ कनूत बहुत ही खूबसूरत दुआ है। दूसरी बात के इसका नमाज में, यानी वितरों की नमाज में जो तस्करा है, ये काबिले गौर है। तीसरी बात यह है कि इसमें इसका जो तर्जमा है, यानी जो इसका पॉइंट है जिसके गिर्द जो दुआ घूम रही है, वो मुसलमानों की जिंदगी के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। दुआ कनूत ऐसे ही नहीं है। हमारे कल्चर में लोग कहते हैं, अच्छा दुआ कनूत ना आती हो तो 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ लो, तो ये इतने प्यारे लफ्ज़ कैसे आएंगे आपको? याद रखिएगा, अल्लाह के नबी की जुबान के मोती, इन जैसी चमक किसी और लफ्ज़ की नहीं होगी। जो बात जब जहां आपने पढ़ के बता दी, आपने मैंने वही करनी है। तो इसके तर्जमे पे गौर करके मैं तो इसका एक दूसरा नाम रख लेती हूँ, मुस्लिम क्रीट। और अल हुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, बुग्ज़ भी अल्लाह के लिए। आज ये सबक किसी हद तक भूला हुआ है उम्मत को, इसको याद करने की ज़रूरत है। इस पे जितना ज़्यादा आप गौर व फिक्र करते जाएंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपका दिल खोलेगा। और इस दुआ पर गौर व फिक्र के नतीजे में ये बात सामने आ जाती है कि जिसे अल्लाह दोस्त बना ले, जिसको अल्लाह इज्जत दे दे, उसको कोई जिल्लत नहीं दे सकता। सिर्फ इसके तर्जमे पे अब नजरें जमाएं, फिलहाल सब बातें भूल जाएं, कब पढ़नी, कहाँ पढ़नी, कैसे पढ़नी, वो एक अलग चीज़ है। आप इस वक्त ये सोचिए कि इसमें कह क्या रहे हैं। ऐ अल्लाह, हिदायत दे और हिदायत वालों में शामिल कर, आफियत दे और आफियत वालों में शामिल कर। आजकल इन दोनों दुआओं की जरूरत है। चारों तरफ तो हमें हिदायत से दूर करने वाले लोग हैं, और दूसरी बात है कि आफियत तो हर वक्त ही थी, आजकल तो वबा के दिन है। फिर बरकत मांगते हैं जो मिला हुआ है, औलाद, माल, घर, सेहत, जिस्म, एक एक चीज़ की बरकत की दुआ। फिर जो फैसले तू कर ले उसके शर से बचा, तकदीर की खूबसूरती। और साथ ही कह दिया कि जब तू फैसला कर ले तो फिर कोई तेरे खिलाफ फैसला नहीं कर सकता, यानी तुझे चैलेंज नहीं कर सकता। जो आप करना चाहते हैं वही होते हैं, हम कुछ सोचते हैं, अल्लाह ताला कुछ और सोचते हैं, और वो होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। और जो आखिरी हिस्सा है, ला यज़िल्लु मन वालैत, उसको जिल्लत मिल नहीं सकती जिसका तू दोस्त बन जाए, और वला युइज़्ज़ु मन आदैत, और जो तेरा दुश्मन हो यानी अच्छे काम ना करे तो उसकी ज़िंदगी में अदावत हो, उदवान हो, उसको कौन इज्जत देगा। और तबारक तरबना वतालैत, तो क्या पता चला कि अपने अकीदे दुरुस्त करने हैं। हम अमूमन लोगों से डरते रहते हैं, उन्हीं का खौफ खाते हैं, कोई ये कर देगा, किसी ने ये कह दिया, वो कह दिया, ठंडा दूध पीकर सो जाइए, अपने सारे मामले रब के हवाले कीजिए। कदम कदम पे एक ईमान वाला आजमाया जाता है कि बंदा इसके जवाब में कहता क्या है। एक रिवायत में आता है कि एक बीमार था, तो नेक शख्स थे, तो उन्होंने बीमारी की शिद्दत से हाय निकल गया, तो फरिश्तों ने वो भी लिख ली, अगर हाय की जगह अल्हम्दुलिल्लाह कहता तो नेकी थी। इतना बारीक बीन है आपका मेरा रब। फिर आप देखिए कि जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कोई जलील कर सकता है। जब आपको ये बात जो समझ आ गई तो फिर आप क्या कोशिश करेंगे, अल्लाह की विलायत में आने की कि दुनिया वालों के पीछे। आज हम बात बात पे डरते हैं, हाय कोई ये कह देगा इज्जत खराब होगी, कहने दीजिए, कहने वाले की ज्यादा खराब होगी, क्योंकि वो कह कर एक तो खुद बुरा बनेगा और दूसरा अल्लाह का भी तो मामला है ना, अल्लाह देख रहा है, कभी किसी की इज्जत के दर पे ना आइए, वरना अल्लाह घर के कोने में रुसवा करता है उस बंदे को जो किसी को रुसवा करना चाहता है। फिर अगली बात देखिए कि ये जो बात आप कहते हैं कि जो तेरी नाफरमानी करे उसको इज्जत नहीं मिलती, तो फिर आप और मैं आज गुनाहों में इज्जत कैसे ढूंढते हैं। अपनी खुशियों गमों में ही हम देखिए क्या क्या काम नहीं कर लेते सिर्फ इसलिए कि इज्जत का मसला। तो क्या पता चला कि दुआ कनूत का तर्जमा बहुत प्यारा, और ये है वो दुआ जो अल्लाह के नबी से साबित है, और अमूमन हमारे कल्चर में लोग ये दुआ नहीं एक दूसरी पढ़ते हैं, उसका जिक्र आगे आएगा। चंद तंबीहात लीजिए, वार्निंग। पहली बात है कि दुआए कनूत वितर में हाथ उठाने के बारे में कोई मरफू रिवायत नहीं, बल्कि मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 101 में रफुल जदैन फी कनूतिल वितर ये टॉपिक है, उसमें बस आसार मिलते हैं। आसार किसको कहते हैं, उर्दू वाले नहीं है। हदीस की इस्तिलाह में आसार असर की जमा, सहाबी का कौल या सहाबी का फेल। देखिए हदीस नबी का कौल, फेल या तकरीर है, ये तो आप समझ चुके हैं। असर होते हैं सहाबी का कौल या सहाबी का अमल, यानी अगर हदीस के बाद किसी चीज का मुकाम है तो वाकई वो आसार का ही मुकाम है। इसलिए हाथ उठाकर या हाथ उठाए बगैर दोनों तरीकों से कनूते वितर की दुआ पढ़ना सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका रेफरेंस आप ले लीजिए, आयमा के अकवाल हैं, तुहफतुल अहफ़ज़ी किताब, बड़ी मारूफ किताब है अरबी की, जिल्द 2 के 486 पे आपको ये चीज़ मिलती है। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी नमाज में दुआए कनूत के दौरान हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन सहाबा की तरफ से इसकी निस्बत है, और सहाबी का अमल भी हुज्जत होता है, क्योंकि अगर अल्लाह के नबी के सहाबा ने आपके सामने कोई काम किया हो तो ये नहीं हो सकता कि अगर वो गलत था या दुरुस्त नहीं था तो अल्लाह के नबी उनको ना रोके। ठीक है, तो फिर आपके लिए पहली बात तो क्या पता चली कि दुआए कनूत रुकू में जाने से पहले पढ़नी है। मुझे यकीन है कि सुनने वालों में से बहुत सारों को हैरत होगी, मैं खुद भी इस हदीस को जब हदीस के इल्म के दौरान पढ़ा तो हैरत हुई थी, उसके बाद से अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पढ़ते हैं, क्या हर्ज है। कल तक उसको सही समझ के पढ़ रहे थे तो अल्लाह वो भी ठीक करेगा, आज पता चल गई, जिम्मेदारी दे दीजिए उनको जिन्होंने ये बात कही। हदीस सामने, तो झगड़े और बात की तो कोई बात नहीं, कहीं गुंजाइश भी होगी तो बाद में पढ़ लीजिएगा। मोमिन का दिल कंपस की तरह होता है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे चूं चिरा नहीं करता। फिर दूसरी बात देखिए, रब्बना व तआलैत के बाद नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, जो आखिर में, ये अल्फाज नबी सल्लम की हदीस में मौजूद नहीं बल्कि महज ये बाज़ उलमा की तरफ से इजाफा है। क्या करें, ना पढ़िए, जो चीज हदीस में आ गई ठीक है। हजरत इब्ने उमर के सामने एक आदमी को छींक आई तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह का, अब देखिए, क्या अच्छी बात की कि बुरी? बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जरा उमर फारूक का रिएक्शन देखिएगा इस बात पे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो क्या कहा? ये सुनकर इब्ने उमर फरमाने लगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह सकता हूँ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हमें ये तालीम नहीं दी, बल्कि ये फरमाया कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल पढ़ा जाए। ये भी रेफरेंस लीजिए, तिरमिज़ी की रिवायत है 2738। सही सनद, और इमाम ज़ाहबी ने भी अलमुस्तदरिक जिल्द 4 में 265 और 266 में इसको सही कहा। तो बात समझ गए, नेकी के जज्बे से अच्छे अल्फाज हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं कहनी क्योंकि अल्लाह के नबी ने नहीं कहे। आपको कहना आता था ना, तो यही तो दीन है। देखिए, नेकी करना मुश्किल नहीं है, जितना करते हुए किसी नेकी से रुकना। क्योंकि लोग कहते क्या हर्ज है, हर्ज ये था कि अल्लाह के नबी ने नहीं कहा। कोई शिर्क नहीं, कोई बिदअत नहीं, कोई बुरी चीज़ नहीं, बस ये ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं अपनी मर्जियां करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मन अहदथ फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्दुन। क्या जिस शख्स ने हमारे दीन में कोई ऐसी बात शामिल की जो इसमें से नहीं है, तो वो मरदूद है। मरदूद मीन रद्द है। और ये देख लीजिए, बुखारी की रिवायत है 2697 और मुस्लिम में 1718। तो क्या पता चला? पहली बात है, ये मालूम हुआ कि मसनून अस्कार और दुआओं में अपनी तरफ से किसी किस्म का इजाफा नहीं करना चाहिए। सही इब्ने खुजैमा की हदीस 1100 में सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हो से साबित है कि वो सैयदना उमर रदी अल्लाह अन्हो के दौर में रमज़ान में क्यामुल लैल कराते और कनूत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते थे। लिहाजा कनूते बितर के आखिर में सल्लल्लाहु अलैहि नबी ही पढ़ना दुरुस्त है। बात वाज़े हो गई। ये तो था वो कनूत जिसको आप वितर के साथ जोड़ते हैं, और दुआए कनूत तुम्हारे कल्चर में इसी नाम से मारूफ है। मैं दो जुमले बोल के इसको और समाप्त कर दूं कि हमने अभी तक जो पढ़ा वो दुआए कनूत के बारे में था, वो दुआए कनूत जो वितर का हिस्सा है, और ये दुआए कनूत जो अभी सीखी ये अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं। एक और दुआए कनूत जो लोग पढ़ते हैं वो हज़रत उमर का अमल है, उसकी बात आगे जाके आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, रुकू से पहले पढ़नी चाहिए, उसमें हाथ उठा भी सकते हैं, नहीं भी उठा सकते, दोनों तरह से रुख्सत मौजूद है। ठीक है, और इसके बाद ये है कि अल्फाज नहीं बढ़ाने चाहिए किसी भी जिक्र या अस्कार के दौरान। देखिए, ये है वो क्राइटेरियन जिसकी बेस पे हम ये बुक पढ़ रहे हैं, वरना आपके भी बुजुर्ग हैं, दूसरों के भी हैं, तीसरों के भी हैं, आप कौन किसको कहे? तो इख्तलाफ कब होता है? जब नबी सल्लम की बात के बाद किसी और शख्सियत की तरफ बात जाती है। अल्लाह के नबी तक तो सब मानते हैं, हर मुसलमान चाहे अमल में कितना कमजोर हो, लेकिन वो हर बात अल्लाह के नबी और कुरान से ही लेता है। अगर ये दो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो तो इस्लाम ही नहीं है उसका। झगड़े बहसें खुलासे कब होते हैं? जब अगली बात चाहती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि चार लोगों ने चार मुख्तलिफ उस्तादों से पढ़ा, हर एक अपना उस्ताद ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, माइंड सेट होता है और दूसरी चीजें। तो जब सबको कहे कि नहीं आप मेरे उस्ताद की बात माने और मेरे उस्ताद से जुड़े, तो दूसरे को भी यही गिला होगा कि ठीक है हम आपके क्यों जुड़े, आप हमारे उस्ताद को मानिए। बस ये बात है ना, कुछ झगड़े ना बैसे। तो आप सिक्योर्ड वे किया कीजिए कि ठीक है जी, सबके उस्ताद बुजुर्ग, हम सारे उस्तादों की इज्जत करेंगे, बात वो ले लेंगे जो हम उस्तादों के उस्ताद से सुनते हैं और जिसकी रेफरेंस, जिसकी सनद ज्यादा मजबूत है। हो सकता है एक में एक के उस्ताद की बात ज्यादा हदीस से करीब है, दूसरे में दूसरे की, तो बस सीधी सी बात है, लोगों से तो जुड़ना नहीं, शख्सियत परस्ती तो है नहीं।